पृष्ठ संख्या 231। जब 1935 ईस्वी के लगभग भारत में प्रगतिशील लेखकों का आंदोलन शुरू हुआ, तो बहुधा अच्छे और नौजवान कवि और लेखक किसी न किसी प्रकार उसमें पृष्ठ संख्या 232 सम्मिलित हो गए। बहुत से पुराने लेखकों ने भी उसका समर्थन किया। टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल हक, आचार्य नरेंद्र देव, सरोजनी नायडू और प्रेमचंद सभी प्रथम श्रेणी के विचारकों ने यह आशा प्रकट की कि भारत जिस आर्थिक दुर्दशा और मानसिक दास्ता में फंसा हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए यह नया आंदोलन जो साहित्य को जनता के निकट लाना चाहता है, एक आवश्यक और सुलभ कदम होगा। अंग्रेजी राज, उसके भक्तों और रूढ़िवादियों के अतिरिक्त किसी ने उसका विरोध नहीं किया। विरोध करने वालों एवं रूढ़िवादियों और प्रतिक्रियावादियों में कौन लोग थे? सामंती युग से चिमटे हुए विद्वान, पूंजीपति और सामूहिक जन चेतना के विरोधी। अच्छे कवियों और लेखकों ने इस आंदोलन में एक नई शक्ति और नया प्रकाश देखा, और अभी जिनका उल्लेख हुआ उनमें से कई प्रगतिशील लेखकों के सहायक ही नहीं वरन पथ प्रदर्शकों में गिने जाते हैं, जैसे जोश और फिराक। लेकिन कुछ कवि और लेखक ऐसे हैं जो प्रगतिशील आंदोलन के फलस्वरूप पैदा हुए और साहित्य क्षेत्र में अपनी जगह बना सके। उनका कोई अतीत नहीं था, उन्हें जो कुछ बनाया इसी आंदोलन ने बनाया। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि जिन कवियों का उल्लेख होने जा रहा है वह सब के सब पूर्णतः प्रगतिशील हैं, या प्रगतिशील लेखक संघ के सभी आदर्शों का प्रतिपालन करते हैं। ऐसा समझना बड़ी भूल होगी। इस संघ को भारतीय जीवन के उन्नतशील विचारों का केंद्र बनते देखकर बहुत से ऐसे लेखक भी इनमें सम्मिलित हो गए जो मध्य वर्ग की दुश्चिंताओं से घिरे हुए थे और अपनी व्यक्तिवादिता को एक नया क्षेत्र देने के लिए इसे एक नवीन आंदोलन समझकर साथ हो गए थे। कुछ तो ऐसे थे जो प्रतीकवाद, अस्पृष्टवाद और प्रयोगवाद तथा अन्य विचारों को प्रयोगशीलता समझकर इसमें आए थे, और उनके सम्मुख कोई सामाजिक सिद्धांत न था। इस संक्षिप्त पुस्तक में प्रत्येक कवि और लेखक के विचार और उसकी चेतना के अस्त्र, उसके वर्ग संबंध और उसके दृष्टिकोण की आलोचना असंभव है। यहाँ केवल उसकी कुछ रचनाओं और एक आध विशेषताओं की ओर संकेत किया जा सकेगा। साहित्य में प्रगतिशीलता और सामाजिक चेतना के चिन्ह तो प्रत्येक युग में ही मिल जाते हैं, परंतु चेतनापूर्वक प्रगतिशील आंदोलन की औपचारिक रूप में नींव उत्तर प्रदेश में पड़ी। परंतु जंगल की आग की तरह इसका प्रकाश सारे देश में फैल गया। जहाँ तक उर्दू साहित्य का संबंध है, लाहौर, बम्बई, पटना, हैदराबाद और यूपी के अन्य नगर इसका केंद्र बन गए। इसमें संदेह नहीं कि इस संघ में ऐसे लेखकों का भी अभाव न था जो केवल नवीनता, प्रयोग और वास्तविकता के नाम पर इसे अश्लीलता का माध्यम बनाना चाहते थे। जनता की दुर्दशा और पुनरुत्थान की ओर से उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। इस प्रकार हम यह भी देखेंगे कि कई महत्वपूर्ण लेखक और कवि जो प्रगतिशील आंदोलन के प्रारंभिक काल में एक लेखक होने के नाते प्रभावशाली जगह रखते थे, धीरे धीरे उससे दूर होते गए, जैसे डॉक्टर तासीर अहमद अली। पृष्ठ संख्या 233। अहमद शाह बुखारी, पितरस, अख्तर, रायपुरी और दूसरे लोग, इन सबके यहाँ एक प्रकार की संकीर्णता पैदा हो गई और यह प्रगतिशीलों के साथ नहीं रहे। इतिहास की दृष्टि से इस स्थान पर उन सभी का उल्लेख होगा जो आज के लेखकों में गिने जाते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध कवि और लेखक फैज प्रगतिशीलों लेखकों में बड़ा ऊंचा स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। अरबी और अंग्रेजी में एमए करने के बाद कुछ समय तक अध्यापन करते रहे। दूसरे महायुद्ध में सेना के शिक्षा विभाग में सम्मिलित हो गए और मेजर के पद तक पहुँचे। पाकिस्तान बनने के बाद कई वर्षों तक अपने राजनैतिक विचारों के कारण जेल में बंदी रहे। कुछ समय तक पत्रिकाओं का संपादन किया और वर्तमान में एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। वह सदैव विभिन्न प्रगतिशील आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं और वहीं से प्रेरणा लेकर बड़ी निर्भीकता किंतु सुंदरता से जनतंत्र, विचार स्वतंत्र और शांति के समर्थन में कविताएं और लेख लिखते रहे। उनके चार काव्य संग्रह नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा और दस्त तहे संग प्रकाशित हो चुके हैं, जो बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी ध्वनि में प्राचीन कवियों की गंभीरता और कलात्मक निपुणता भी मिलती है और नए जीवन की व्याकुलता और क्रांतिकारी उत्साह भी। उन्होंने परंपरा से केवल उतना ही हटने की कोशिश की है जितना अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आवश्यक समझा है। उन्होंने अपना समय प्रयोगों में व्यतीत नहीं किया, बल्कि जो कोई भी उनकी कविताएं पढ़ेगा उसे एक करुणाजनक, आशापूर्ण और शक्तिशाली नवीनता का अनुभव होगा, जो उनके सिवा और कहीं इस सुंदरता से नहीं मिलती। फैज की काव्य शैली प्रतीकों और प्रतिबिंबों में निहित शक्ति का वहन करते हुए धीरे धीरे प्रवाहमयी होती है, जो उनको भी प्रभावित करती है और उनके पाठक को भी, उनको भी जो उनकी सामाजिक दृष्टि का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए यह छोटी सी कविता देखिए। फिर कोई आया दिले यार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खविदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक में धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो समय बढ़ा दो मऊ मीनाओं अयाग, अपने बेखाब किवाणों को मुकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। पृष्ठ संख्या 234, असरारुल हक मजाज, 1911 से 1955 ईस्वी, प्रगतिशील कवियों में बड़े लोकप्रिय रहे। लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो में नौकर रहे। परंतु जब प्रगतिशील आंदोलन बढ़ा तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पत्रिकाओं में लिखने लगे। उनकी कविताओं का संग्रह आहंग के नाम से कई बार प्रकाशित हो चुका है। यही संग्रह सबताब और साजे नौ के नाम से भी छपा है। आरंभ में मजाज ने गजलें लिखी, लेकिन शीघ्र ही अपना रास्ता ढूंढ लिया। उनकी कविता में प्रगतिशील आंदोलन के कई मोड़ मिलते हैं। आरंभ में ये रोमानी थे और क्रांति के समय में भी उनकी विचारधारा केवल रोमानी कल्पनाओं या युवावस्था की साधारण घटनाओं से प्रेरणा लेती थी। परंतु जैसे जैसे प्रगतिशील लेखकों की चेतना बढ़ती गई, मजाज भी आगे बढ़ते गए। मजाज को उस समय के भारत के जागते हुए नवयुवकों की आशाओं, कल्पनाओं और व्याकुल उमंगों का कवि कहा जा सकता है। उनकी शैली बड़ी प्रभावशाली, सरस और सबल है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जो कुछ लिखा है बड़े उच्च कोटि का है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता के कुछ छंद देखिए। शहर की रात और मैं नाच दो नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ए रूफली छाँव ए आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, एक महल की आड़ से निकला ओ पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर चलती हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। मुइन अहसन यज़वी, जन्म 1912 ईस्वी, मजाज के समकालीन कवि हैं और इस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आरंभ में उन्होंने अपनी कविताएं पृष्ठ संख्या 235 फानी बदायूनी को दिखाई और वही शोकपूर्ण रंग ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में आकर उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। परंतु उनके निकट रहते हुए भी वह कला के संबंध में अपना एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने गजलें अधिक और दूसरे प्रकार की कविताएं कम लिखी हैं। उनकी रचनाएं बड़ी रोचक और भावपूर्ण होती हैं। वह मानव की पीड़ा और वेदना को व्यक्ति की वेदना के रूप में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य संग्रह फरोजा और सुखने मुख तसर के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। दो चार शेर उदाहरण के लिए दिए जाते हैं। जब किश्ती सावित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मुसर्रत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। अब कहाँ मैं ढूंढने जाऊं सुकून को, ऐ खुदा, इन जमीनों में नहीं, इन आसमानों में नहीं। न आए मौत खुदाया, तबाह हाली में, ऐ नाम होगा गमे रोजगार सह न सका। जमील मजहरी, जन्म 1905 ईस्वी, इस युग के उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्हें कलावाद के उपासक और नई पीढ़ी के साहित्य प्रेमी दोनों सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वह बिहार के रहने वाले हैं। पहले बहुत दिनों तक कलकत्ते में रहकर पत्रकार का जीवन बिताते रहे। उसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से परिचय हुआ, जिसने उनके लेखों और कविताओं में भारतीयता की भावनाओं को उभार दिया। कुछ दिनों बिहार प्रदेश में सरकारी नौकरी की और फिर उससे त्यागपत्र देकर पटना विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक हो गए। अब अवकाश ग्रहण करके साहित्यिक जीवन बिता रहे हैं। जमील मजहरी को दर्शन शास्त्र से विशेष रुचि है, इसलिए अपनी कृतियों में जीवन के रहस्य और गंभीर तत्वों को अत्यंत कलात्मक सौंदर्य बोध से प्रस्तुत करते हैं। गद्य भी अच्छी लिखते हैं, परंतु उनके ख्याति कवि के रूप में ही अधिक है। उनके दो काव्य संग्रह फिक्रे जमील और नक्शे जमील प्रकाशित हो चुके हैं। एक गज़ल के कुछ शेर उदाहरणार्थ देखिए। कोई सवाले खुदाओ सनम नहीं है दोस्त, मैं क्या करूं मेरी गर्दन में खम नहीं है दोस्त। पृष्ठ संख्या 236। अगरचे सर्द अंधेरे हैं, वाई से तकलीफ, मगर एक गर्म उजाले भी कम नहीं है दोस्त। अजब मिजाज है इन मैकदा मशीनों का, कि कद्रे जाम तो है, कद्रे जम नहीं है दोस्त। खुशामदों से भी चलता नहीं है काम यहाँ, मुआमिला है खुदा से सनम नहीं है दोस्त। खुला है और खुलेगा जमील सबके लिए, ये मैकदा है कि निश तो हरम नहीं है दोस्त। वर्तमान युग के एक बड़े क्रांतिकारी और कवि मखदूम मुहिमुद्दीन हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा समाप्त करके वह एक कॉलेज में अध्यापक हो गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने के लिए नौकरी छोड़ दी और अब एक बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। आरंभ में उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में नाम पैदा किया था, परंतु अब अधिकतर कविताएं ही लिखते हैं। एक पुस्तक टैगोर पर और कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मखदूम की रचनाएं बड़ी चेतनापूर्ण, मनोहर और शक्तिशाली होती हैं। उनकी कला और क्रांतिवादी दृष्टि में ऐसा सामंजस्य मिलता है कि उनकी चेतना की शक्ति रचनाओं में प्रस्तुत हो जाती है। यह बात उनके काव्य संग्रहों के अध्ययन से भली भांति सिद्ध हो जाती है। फैज की तरह ही मखदूम भी प्रतीकों और बिंबों से काम लेते हैं और सामाजिक चेतना के भीतर अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करते रहते हैं। उनकी कविताओं का संग्रह सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसाते रक्स प्रकाशित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए एक कविता के कुछ शेर देखिए, जिसका शीर्षक है मशरिक पूरब है। झड़ चुके हैं दस्तों बाजू जिसके, उस मशरिक को देख, खेलती है सांस सीने में मरीजे दिक को देख। एक नंगी लाश बेगोरो कफन ठिठुरी हुई, मगरिबी चीलों का लुकमा खून में लिथड़ी हुई। एक कब्रिस्तान जिसमें हूँ नहा कुछ भी नहीं, एक भटकती रूह है जिसका मका कोई नहीं। इस जमीने मौत पर वरदा को ढाया जाएगा, एक नई दुनिया नया आदम बनाया जाएगा। जा निसार अख्तर, जन्म 1914 ईस्वी, अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त करके कई वर्ष तक ग्वालियर और भोपाल के कॉलेजों में अध्यापक रहे। उनके पिता मुजत्तर खैराबादी, पृष्ठ संख्या 237, भी बड़े अच्छे कवि थे। अख्तर विद्यार्थी जीवन में बड़ी मनोहर रोमानी कविताएं लिखते थे। दूसरे नए कवियों की भांति वह भी क्रांति की ओर आए। उनके कई काव्य संग्रह जिनमें सलासिल और जाविदा प्रसिद्ध हैं। शांति पर एक प्रबंध काव्य अमननामा प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कविताएं सुंदर और सजीव होती हैं। वह प्रगतिशील कवियों में एक उच्च स्थान रखते हैं और चेतनापूर्वक लिखते हैं, परंतु कुछ लोगों को उनमें उस शक्ति की कमी दिख पड़ती है जो राजनीतिक विषयों पर लिखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सफिया के लेखों और पत्रों के तीन संग्रह जेरे लब, अंदाजी नज़र और हर्फ आशना भी प्रकाशित किए हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो शाने पर बगावत का अलम लेकर निकलते हैं, किसी जालिम हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर, नज़र से जिनके बिजली कौंधती है आसमानों पर। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, झुलस सकते हैं जो शोलों से गुफरों दी की बस्ती को, जो लानत जानते हैं मुल्क में फिरका परस्ती को। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, वतन के नौजवानों में नए जज्बे जगाऊंगा, मैं उनके गीत गाऊंगा, मैं उनके गीत गाऊंगा। अली सरदार जाफरी, जन्म 1912 ईस्वी, वर्तमान युग के अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने मार्क्सवादी आदर्शों को अपना लिया और साहित्य रचना में उसी से काम लेते हैं। उन्हें प्रगतिशील आंदोलनों में भाग लेने के कारण कई बार शिक्षा अलीगढ़, दिल्ली और लखनऊ में प्राप्त की। लखनऊ में उन्होंने मजाज और सिब्ते हसन के सहयोग से एक पत्रिका नया अदब निकाली थी। फिर वह बाद में बम्बई चले गए, जहाँ फिल्मी तथा साहित्यिक कार्यों में लगे हुए हैं। आरंभ में उन्होंने कुछ रोमानी कविताएं लिखी, लेकिन अब उनकी चेतना सभी सामाजिक और राजनीतिक विषयों को यथार्थवादी दृष्टि से देखती है। उनकी इस चेतना का विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी चेतना के साथ हुआ है और उसका एक अच्छा आईना भी है। मानव प्रेम उनकी कविताओं में फटा पड़ता है। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जाफरी के शब्द और वाक्य एक ज्वालामुखी के समान फट पड़ते हैं। उनकी वर्ग चेतना उनकी कविताओं में सच्चा जोर भर देती है। पृष्ठ संख्या 238, उनके काव्य संग्रह खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और देखने योग्य है। उनका एक प्रबंध काव्य नई दुनिया को सलाम के नाम से प्रकाशित हुआ है, जो साम्राज्य विरोधी भावनाओं से भरा हुआ है और मुक्त छंद के प्रयोग का एक बहुतम सुंदर उदाहरण माना जाता है। जाफरी ने प्रगतिशील आंदोलन पर एक आलोचनात्मक पुस्तक तरक्की पसंद अदब के नाम से लिखी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दीवाने गालिब, दीवाने मीर और कबीर बानी का संपादन भी किया है, जो हिंदी उर्दू लिपियों में एक साथ प्रकाशित हुई हैं। उनकी मुक्त छंद कविता का एक उदाहरण दिया जाता है। जाग हिंदुस्तान, अपने ख्वाबे गिरा से देख, आज़ादी की सुबह का नूर फैला हुआ है। तेरे बरसों के बिछड़े हुए लाल घर आ रहे हैं, एक गुलामी की जंजीर तोड़ आए, कैद खाने के दर खोल आए, अपनी आगोश में इनको बढ़कर उठा ले, अपने दिल में बिठा ले। ये हिमालय है, यह विंध्याचल है, यह नीलगिरी, ये तेरे खेत हैं, तेरे खलिहान हैं, तेरी काने हैं, ये बाग हैं, तेरे कारखाने, ये तेरे सब्जों शादाब मैदान, ये हँसती हुई वादियाँ हैं, यह तेरी साफो शफाफ बहती हुई नदियाँ, तेरी गोदों की पाली हुई बेटियाँ हैं, अपने पाकीज़ा आँचल के नीचे छिपा ले। साहिल लुधियानवी, जन्म 1922 ईस्वी, वर्तमान युग के प्रगतिशील और लोकप्रिय कवि हैं। वह भी उर्दू के बहुत से नौजवान कवियों की भांति रोमांस से क्रांति की ओर बढ़े हैं। उनकी आरंभिक कविताओं में प्रेम और सुंदरता का बड़ा रोचक और मनहरण वर्णन होता है। उन्होंने प्रेम के संबंध में भी वर्ग चेतना को सामने रखा है और स्वच्छंद प्रेम में जो सामाजिक बाधाएं पड़ती हैं उनका उल्लेख बड़े करुणाजनक और व्यंग्यपूर्ण ढंग से किया है। वह अधिकतर क्रांतिकारी और प्रगतिशील कविताएं लिखते हैं। उनकी उपमाएं सुंदर और उनके संकेत सूक्ष्म होते हैं। वह कला की दृष्टि से भी आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनके काव्य संग्रह तल्खियां और परछाइयां अनेक बार प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ समय से फिल्मी संसार ने उन्हें अपना लिया है। फिल्मी गीतों का एक संग्रह गाता जाए बंजारा भी छप चुका है। पृष्ठ संख्या 239। उदाहरण के लिए उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं। जेहाद खत्म हुआ, दौरे आश्ती आया, संभल के बैठ गए महमिलों में दीवाने, हजूमे तशना लबा की निगाह से ओझल, छलक रहे हैं शराबे नफस के पैमाने। ये जश्न जश्ने मुशर्रत नहीं तमाशा है, ये नए लिबास में निकला है हर जनों का जुलूस, हजार समय उखुवत बुझा के चमके हैं ये तीरगी के उभरे हुए हंसी फानुस। अहमद नदीम कासिमी, जन्म 1916 ईस्वी, पंजाब के प्रमुख प्रगतिशील कथाकार और कवि हैं। उन्होंने पंजाब के देहातों का चित्रण अपनी कहानियों और कविताओं में बड़े सुंदर रूप में किया है। उनकी काव्य शैली बड़ी सजीव और उनके शब्द बड़े मीठे लगते हैं। आरंभ में उन्होंने श्रृंगार रस को ही अपनाया, परंतु धीरे धीरे देश की राजनीतिक चेतना से प्रभावित होकर विचारशील और प्रगतिशील कविताएं लिखने लगे। उनकी सुंदर कविताएं मानव प्रेम की भावना जगाती हैं और भविष्य के सुंदर सपनों का चित्रण करती हैं। उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें जलालो जमाल, सुलह गुल और दस्ते वफा प्रसिद्ध हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के लिए देखिए। ख्यालो ख्वाब की दुनिया से भाग आया हूँ, जवानियों के चमन यार त्याग आया हूँ, मैं बन के राग गया होके आग आया हूँ, शफक में डूबे हुए पर्वतों पे घूम चुका, हवा में खोई हुई रागिनी पे झूम चुका, गुलों के भीगे हुए आरियों को चूम चुका, बस अब उलट के रहूँगा ये पर्दा हाय कदीम की, आम हो न सकी तेरी रहमतों की शमीम, मैं आरजू को हकीकत बना के दम लूँगा। पृष्ठ संख्या 240। मैं अपनी खाक से नकहत बना के दम लूँगा, तेरे जहान को जन्नत बना के दम लूँगा। कैफी आजमी, जन्म 1917 ईस्वी, एक लोकप्रिय प्रगतिशील और क्रांतिकारी कवि हैं। उनके दो संग्रह झनकार और आखिरी शब्द प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने श्रृंगार रस में डूबी हुई कविताएं लिखी हैं और फिर चेतनापूर्वक राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के गीत गाने लगे। अब साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं और अपनी कविताओं में कलात्मक ढंग से क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर भी रोचक और प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। जनता के दुख सुख को उन्होंने अपनी कविताओं में इस प्रकार समोया है कि कला और विषय एक हो जाते हैं। कुछ समय से वह मुक्त छंद का प्रयोग भी बड़ी सफलता से कर रहे हैं। उनकी एक सुंदर कविता के कुछ शेर देखिए। कली का रूप फूल का निखार लेके आई थी वो, आज कुल खजानाए बहार लेके आई थी, तमाम रात जागने के बाद चश्मे मस्त में यकीन का रस उम्मीद का खुमार लेके आई थी, बसंती सारी में छिपा हुआ सा वो जवां बदन पे रेशमी बहार लेके आई थी, वह संदली कलाइयाँ वह सब्जो सुर्ख चूड़ियाँ सुहाग लेके आई थी, सिंगार लेके आई थी, मेरी उजाड़ जिंदगी की चिलचिलाती धूप में वह गेसुओं का अवरे इत्र बार लेके आई थी, उदास उदास जिस्त को सुना रही थी बांसुरी, घुटे घुटे सुकूत में सितार लेके आई थी। इस पीढ़ी के क्रांतिकारी कवियों में मंजरू सुल्तानपुरी भी लोकप्रिय कवि हैं। अन्य प्रगतिशील कवियों की भांति वह भी रोमानी आदर्शों से क्रांति की ओर आए हैं। उन्होंने अधिकांश गजलें ही लिखी हैं, जिनका एक छोटा सा संग्रह गजल के नाम से प्रकाशित हो चुका है। आजकल अधिकतर फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं, परंतु उनकी गजलें साहित्यिक महत्व तो रखती हैं। उनमें रसीलेपन के साथ साथ प्रगतिशीलता भी मिलती है। उनके यह शेर उदाहरण के लिए देखिए। पृष्ठ संख्या 241। दुश्मन की दोस्ती है अब अहले वतन के साथ, है अब खीजा चमन में नए पैरहन के साथ। सर पर हमारे जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी वांकपन के साथ। बहकर जमी पे है अभी गर्दिश में खून मेरा, कतरे व फूल बनते हैं खाके वतन के साथ। किसने कहा कि टूट गया खंजरे फिरंग, सीने पे जख्म नौ भी हैं दागे कुहन के साथ। शमीम करहानी जन्म 1916 ईस्वी, नए कवियों में एक ऊंचा स्थान रखते हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुछ समय तक धार्मिक और रोमानी कविताएं लिखते रहे, फिर देश के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीतिक और क्रांतिकारी कविताएं लिखने लगे। अपनी रचनाओं में कभी कभी हिंदी के शब्द बड़ी कलात्मकता के साथ ले आते हैं। इस समय तक उनके चार काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं वरको वारा, रोशन अंधेरा, तराने और अक्से गुल। कुछ समय से राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक विशाल प्रबंध काव्य के रूप में लिपिबद्ध कर रहे हैं। उनके एक राष्ट्रगान के कुछ शेर देखिए। हम काम के नगमे गाते हैं बेकार तराना क्या जाने, जो सिर्फ अमल के बंदे हैं वो बात बनाना क्या जाने। रग रग में लहू को गरमाते जाते हैं वतन की जय करते, हम अहद जवानी के माते बूढ़ों का जमाना क्या जाने। तूफान में किश्ती खेते हैं कुहसार से टक्कर लेते हैं, हम जंग में सर दे देते हैं हम पांव हटाना क्या जाने। वे खौफ चले संगीनों पर और रोक ले गोली सीनों पर, लिखा है हमारी जबीनों पर हम सर को झुकाना क्या जाने। बाल मुकुंद अर्श मलसियानी जन्म 1908 ईस्वी, पंडित लभु राम जोश के सुपुत्र और स्वयं एक अच्छे कवि हैं। जोश मलसियानी को पुराने कवियों में उच्च मर्यादा प्राप्त है। राग के काव्य शिष्य हैं और स्वयं काव्य गुरु माने जाते हैं। भाषा और काव्य शास्त्र के अधिकारी विद्वान के रूप में सुविख्यात हैं। उनके काव्य संग्रहों में फिरदौसे गोश और जुनूनो होश उल्लेखनीय हैं। अर्श भी अपना एक स्थान रखते हैं। कई वर्षों तक उर्दू मासिक आजकल के संपादक रह चुके हैं। उनकी कविता में पुराने और नएपन का सामंजस्य होता है। सच्चाई और सादगी उनकी रचनाओं में मूल रूप से दिखाई पड़ती है। पृष्ठ संख्या 242। बड़ी निपुणता से गीत गजल और नज्म सभी लिख सकते हैं। उनकी कविताओं के कई संग्रह प्रसिद्ध हैं, जैसे हफ तरंग, चंगो आहंग, शरारो संग। उनकी एक गजल के कुछ शेर देखिए। जिस गम से दिल को राहत हो उस गम का मदावा क्या मानी, जब फितरत तूफानी ठहरी साहिल की तमन्ना क्या मानी। राहत में रंज की आमे जिस, इसरत में अलम की आलाइश, जब दुनिया ऐसी दुनिया है फिर दुनिया दुनिया क्या मानी। खुद शेख वरहमन मुजरिम है, एक जाम से दोनों पी न सकें, साकी की बुखल पसंदी पर साकी का शिकवा क्या मानी। जगन्नाथ आजाद जन्म 1918 ईस्वी भी पंजाब के प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। वह भी उर्दू के प्रसिद्ध कवि तिलोक चंद महरूम के सुपुत्र हैं। भारत की स्वतंत्रोत्तर परिस्थितियों की जन्म अनुभूतियों ने उनकी कृतियों में एक करुणा उत्पन्न कर दी है, जो उनकी रचनाएं पढ़ने वाले को बहुत प्रभावित करती हैं। आजाद प्रगतिशील और उग्र विचारों के कवि हैं। उन्होंने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु कवि की हैसियत से उनका एक साहित्यिक स्थान है। उनकी शैली पर थोड़ा बहुत प्रभाव इकबाल का भी देख पड़ता है। उनके काव्य संग्रह वे करां सितारों से जर्रों तक अपने वतन के अजनबी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके अध्ययन से उनके प्रगतिशील विचारों और मानव प्रेम का अनुभव होता है। उनके भी कुछ शेर उदाहरण के लिए नीचे दिए जाते हैं। बस एक नूर झलकता हुआ नजर आया, फिर उसके बाद न जाने चमन पे क्या गुजरी। मैं काश तुमको भी आले वतन बता सकता, वतन से दूर किसी बेवतन पे क्या गुजरी। मेरे चमन में भी आई तो थी बहार, मगर मैं क्या बताऊं कि अहले चमन पे क्या गुजरी। खामोश क्यों हैं कतलो नदीम, कुछ तो कहें हमारे बाद हमारे वतन पे क्या गुजरी। अख्तर अंसारी, जन्म 1909 ईस्वी, कवि, आलोचक और कथाकार तीनों रूपों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रारंभ में शेली और कीट से प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में नैराश्य और करुणाजनक भावनाओं का प्रचार करते थे।